लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, प्रार्थना मानवीय हृदय में उठती एक चाह को व्यक्त करती है। अपने हृदय की उस चाह के कारण हम याचना और विनय करते हुए उस ईश्वर के सानिध्य में आते हैं, जो हमें उन चीजों को देने, हमारी जरूरतों और चाहतों को पूरा करने के योग्य हैं। वहीं हमारी प्रार्थना हमारे हृदय की उस चाह को घोषित करती है, जहां हम अपने को दिव्य ईश्वर से संयुक्त रखने की अभिलाषा रखते हैं, जो अपनी आशीष और कृपाओं के माध्यम हमारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं। श्रोताओ, यह प्रार्थना है जो हमें जीवनदाता ईश्वर से संयुक्त करता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन की अर्थ पूर्णता को पाते हैं। शिष्यों ने अपने गुरु यीशु ख्रिस्त को निरंतर प्रार्थना करते हुए देखा था, अतः वे उनसे विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे उन्हें भी प्रार्थना करना सिखलाएं। आइए हम सत्र में ही सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार का श्रवण करते हुए अपने जीवन की परख करें कि प्रार्थना को हम किस रूप में लेते हैं। क्या हम अपने विश्वास के कारण निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करती और जुड़े रहते हैं? क्या प्रार्थना में हमारी निरंतरता बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप हम बिना थके अपनी मिन्नतों को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं?
एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे योहन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो। हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं, हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे, तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा, अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा?
श्रोताओं, ईश वचन हमें प्रार्थना में व्याप्त दिव्य शक्ति को जानने, समझने और अनुभव करने में मदद करे, जिससे हम अपने को इसके लिए समर्पित कर सकें जो ईश्वरीय योजना के अनुसार हमारे जीवन में कई तरह से निखार लाती है। श्रोताओं, उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए विश्वास के पिता अब्राहम की विनयी प्रार्थना को प्रस्तुत करता है। वे सोदोम और गोमोरा की रक्षा के लिए ईश्वर से निवेदन करते हैं, जिसे ईश्वर अपने क्रोध में विनाश करने की चाह रखते हैं। अब्राहम ईश्वर से वार्ता करते हुए धर्मी लोगों की रक्षा हेतु सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बारंबार अपनी नम्रता में ईश्वर से विनय करते और प्रार्थना करते हैं। याहवे धर्मी अब्राहम के हर निवेदन प्रार्थना को सुनते और सोदोम गोमोरा के प्रति अपने क्रोध पूर्ण विनाश के विचार का परित्याग करते हैं। श्रोताओं, यहाँ हम एक धर्मी और ईश्वर भक्त व्यक्ति की प्रार्थना को फलहित होता पाते हैं। आज का पहला पाठ हमें प्रार्थना की निरंतरता के साथ साथ याहवे का मानव के प्रति उनकी करुणा को व्यक्त करता है। हमारा अपने ईश्वर के पास विश्वास के साथ आना और उनसे बिना थके किसी बात की अर्जी करना हमारे लिए उस चाहत की पूर्ति करता है जिसे हम पाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ईश्वर विनाशक ईश्वर नहीं अपितु जीवन देने वाले ईश्वर हैं, जो हम सबों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। श्रोताओं, हमारे ईश्वर की करुणामय और क्षमाशीलता के गुण जिसे वे अपने श्रेष्ठ प्राणियों के लिए व्यक्त करते हैं, कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज के दूसरे पाठ में अभिव्यक्त होता है। ईश्वर हमारे पापों और गलतियों का हिसाब नहीं रखते, बल्कि उन्होंने अपने को क्रूस काठ पर ठोके जाने के द्वारा हमारे पापों का भार अपने ऊपर ले लिया। इस भांति उन्होंने हमें सभी पापों से मुक्त किया है, जो हमारे लिए बपतिस्मा संस्कार के रहस्य को व्यक्त करता है। बपतिस्मा संस्कार में एक दीक्षार्थी को पानी में डुबोकर निकालना या हमारे सिर पर पानी उंडेला जाना हमें उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान में सहभागी बनाता है, जहां हम अनंत काल तक जीवित रहने वाले यीशु ख्रिस्त में नए जीवन के सहभागी बनते हैं। श्रोताओं, यीशु में मिला नया जीवन हम सबों में व्याप्त एक चाह की ओर हमारा ध्यान इंगित कराता है, जहां हम अपने लिए अनंत जीवन उस अनंत खुशी की कामना करते हैं जो हमें मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त से संयुक्त रहने में मिलती है। इस चाह के कारण शिष्य स्वामी से इस बात हेतु आग्रह करते हैं कि वे उन्हें भी प्रार्थना करने हेतु सिखलाएं, जैसे कि योहन बपतिस्ता ने अपने शिष्यों को सिखलाया था। श्रोताओं, सुसमाचार में हमने यीशु की उस सुंदर प्रार्थना के बारे में सुना, जिसके द्वारा वे अपने शिष्यों को स्वर्गीय पिता के संग संयुक्त होने की शिक्षा देते हैं। वे अपने शिष्यों को अपने स्वर्गीय पिता के पास प्रार्थना करना सिखलाते हैं। इतना ही नहीं, वे निवेदन पूर्ण प्रार्थना की महत्ता को एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं। यीशु के द्वारा दिया गया उदाहरण हमारे लिए विश्वास और दृढ़ता को व्यक्त करता है, जो आज के पाठों का सार है। श्रोताओं, प्रार्थना ईश्वर के संग एक वार्ता है, जहां हम अपने दिल की सारी बातों को यीशु के सामने रखते और अपने जीवन के लिए उनकी आशीष और कृपा की याचना करते हैं। विश्वास में पुत्र के माध्यम पिता के पास अपनी इच्छाओं और निवेदनों को प्रार्थना के रूप में रखना हमारे लिए तब लाभप्रद होता है जब हम अपने को ईश्वरीय कृपाओं के लिए खाली करते हैं। अपने को खाली करने का तात्पर्य यहाँ हमारे लिए उन अनचाही बातों से अपने को मुक्त करना है जो हमारे हृदय में भरे हुए हैं। ईश्वरीय आशीष और कृपा को ग्रहण करने हेतु हमारे लिए चाहिए कि हम अपने हृदय रूपी पात्र को शुद्ध और पवित्र करें। हम बहुधा ईश्वर के वरदानों से अपने को इसलिए वंचित पाते हैं क्योंकि हमने उन्हें ग्रहण करने हेतु अपने हृदय को तैयार नहीं रखा है। अतः हे पिता की प्रार्थना में यीशु हमें अपने अपराधियों को माफ करने का आह्वान करते हैं, जैसे कि वे हमें सभी पापों से मुक्त करते हैं। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें प्रार्थना के मर्म को समझने में मदद करें, जिससे हम उनके द्वारा सदैव पिता के संग अपने को संयुक्त रख सकें, जो एक अच्छे पिता की भांति हमारी सारी जरूरतों को बिना मांगे ही पूरा करते हैं।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। इतालवी गणराज्य के राष्ट्रपति श्री सर्जो मत्तारेल्ला के 81वें जन्मदिन के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने तार भेजकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। संत पापा ने राष्ट्रपति सर्जो मत्तारेल्ला को संबोधित कर कहा कि वे उनके जन्मदिन की सुखद वर्षगांठ पर उनके स्वागत अभिवादन में भाग लेना चाहते हैं। संत पापा ने व्यक्तिगत रूप से और इटली वासियों के लिए दी गई उनकी उच्च सेवा की सराहना की। संत पापा ने कहा कि देश इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में वे अपने विशेष क्षेत्राधिकार और महत्वपूर्ण विकल्पों द्वारा एक मौलिक और आवश्यक योगदान की पेशकश करना जारी रखते हैं। इसलिए मैं खुशी खुशी उन लोगों के साथ जुड़ता हूं जो आज के आनंद को साझा करते हैं, आपके जन्मदिन समारोह को एक यादगार घटना बनाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी प्रशंसा और आपके प्रति आभारी हूं। मैं आपको, आपके प्रियजनों और सहयोगियों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद देता हूं। 81 वर्षीय माननीय सर्जो मत्तारेल्ला एक इतालवी राजनीतिज्ञ, न्यायविद, अकादमिक और वकील हैं, जिन्होंने 2015 से इटली के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना शुरू किया। उनका जन्म पालेर्मो में 23 जुलाई 1941 को हुआ। उनके दो बेटे और एक बेटी हैं। उधर कनाडा में 24 से 29 जुलाई तक संत पापा फ्रांसिस की प्रायश्चित तीर्थ यात्रा से पहले एडमोंटन के महाधर्माध्यक्ष रिचर्ड स्मिथ ने संत पापा की यात्रा के लिए अपनी आशाओं और अपेक्षाओं को साझा किया। मूल निवासियों के साथ मिलाप और चंगाई की संत पापा की यात्रा रविवार को एडमोंटन में शुरू होगी और क्यूबेक सिटी और इकाइलुइट में रुकने के साथ जारी रहेगी। महाधर्माध्यक्ष रिचर्ड आश्वस्त हैं कि कनाडा के मूल निवासियों के लिए संत पापा फ्रांसिस की प्रायश्चित तीर्थ यात्रा संत पापा को एक बार फिर करुणावान व्यक्ति के रूप में प्रकट करेगी, जो आदिवासी लोगों के दर्द को सुनने और मेल मिलाप के साथ इसका जवाब देने के लिए कलीसिया की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करेंगे। पश्चिमी शहर एडमोंटन के महाधर्माध्यक्ष ने इस बसंत ऋतु में रोम की यात्रा के दौरान कनाडा के मूल निवासियों के प्रतिनिधियों के साथ संत पापा की बैठक को याद किया। महाधर्माध्यक्ष ने कहा, रोम में जो कुछ हुआ वह यह है कि मूल निवासियों के प्रतिनिधि मंडल ने संत पापा के रूप में बहुत ही करुणावान व्यक्ति से मुलाकात की। उन्होंने वही कहा जो उन्होंने देखा और अनुभव किया। संत पापा ने एक चित होकर दिल से उनकी बातों को सुना। महाधर्माध्यक्ष स्मिथ ने कहा कि उस बैठक में संत पापा फ्रांसिस ने गहन करुणा के साथ बात की। अपने स्वयं का रुख और कलीसिया का रुख एकदम स्पष्ट था। यह एक ऐसा रुख है जो दर्द को सुनता है और उपचार के साथ इसका जवाब देना चाहता है। एक ऐसा रुख जो मूल निवासियों के अधिकारों को स्वीकार करता है और उन्हें अपने साथ बनाए रखना चाहता है। एक ऐसा रुख जो मूल वासियों की सांस्कृतिक प्रतिभा और सुंदरता में निहित महान ज्ञान को स्वीकार करता है। महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि कनाडा में कैथोलिक मूल निवासियों के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन को सुनिश्चित करना चाहते हैं। कनाडा के धर्माध्यक्षों ने विशेष रूप से मूल निवासियों के साथ मिलकर काम करने, निकट आने और उनके साथ मिलकर यह समझने की इच्छा व्यक्त करने की कोशिश की है कि हम उन विभिन्न चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं जिनका वे सामना कर रहे हैं। हमें उनकी संस्कृति और उनके परंपरा में छिपे ज्ञान को सीखने की जरूरत है। हम सभी की ओर से बोलने के लिए संत पापा फ्रांसिस से बेहतर कोई नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, संत पापा फ्रांसिस के विशेष व्यक्तित्व को देखते हुए संदेश को किसी और की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से सुनाने की अद्वितीय क्षमता है। उधर अद करिश्मा तुएंदुम अर्थात करिश्मे की रक्षा के लिए दस्तावेज द्वारा 7 अगस्त से संत पापा फ्रांसिस ने धर्माध्यक्षों के विभाग से ओपुस देई की शक्तियों के हस्तांतरण का आदेश दिया है और यह स्थापित किया है कि याजक अब ओपुस देई के सर्वोच्च अधिकारी बनेंगे। संत पापा का मोतू प्रोप्रियो अद करिश्मा तुएंदुम नया अभिविन्यास स्थापित करता है जो युत्सित के कुछ लेखों का संशोधन करता है जिसे हाल ही में प्रेरितिक संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। प्रेदिकाते एवांजेलुम के अनुच्छेद 117 के आधार पर ओपुस देई अब धर्माध्यक्षों के लिए नहीं होगा, यह पुरोहितों के लिए होगा। यह वाटिकन धर्माध्यक्षों के विभाग के अधीन नहीं बल्कि पुरोहित इसके उच्च अधिकारी बनेंगे। उच्च अधिकारी ओपुस देई का एक वार्षिक प्राधिकरण प्रस्तुत करेगा। मोतू प्रोप्रियो अनुच्छेद 4 में कहा गया है, आत्मा की विशेष उपहार की सुरक्षा के लिए पदानुक्रमित अधिकार की तुलना में करिश्मे पर अधिक आधारित महासमिति की आवश्यकता है। अतः ओपुस देई का उच्च अधिकारी रेवरेन मोनसिन्योर से जाने जाएंगे। उधर श्रीलंका के कार्डिनल माल्कम रंजीत ने नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करने के 24 घंटे से भी कम समय में सशस्त्र पुलिस कर्मियों और सैनिकों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला किए जाने के बाद देश की नवगठित सरकार की जांच शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की। कार्डिनल ने कहा कि निहत्थे युवा यह घोषणा करने के बाद साइट छोड़ने की तैयारी कर रहे थे कि उन पर पुलिस कर्मियों और सेना के सैनिकों ने हमला करना शुरू किया। कुछ घायल हुए और अन्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्डिनल ने राष्ट्रपति की इस उच्च स्तरीय कार्यवाही की पूरी तरह से निंदा की। उधर लाखों लोगों के भूखे रहने की बढ़ती चिंताओं के बीच रूस और यूक्रेन ने अनाज निर्यात के लिए यूक्रेन के काला सागर बंदरगाहों को फिर से खोलने के लिए शुक्रवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तुर्की और संयुक्त राष्ट्र ने समझौते की घोषणा की। रूसी आक्रमण से अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संकट बढ़ गया है। रूस और यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े खाद्य निर्यातकों में से हैं। इन देशों ने अपनी रक्षा और बुनियादी ढांचे के मंत्रियों को इस्तांबुल भेजा ताकि वे बड़े पैमाने पर भूखमरी से बचने के उद्देश्य से एक हस्ताक्षर प्रक्रिया में भाग ले सकें। ओडेसा में लगभग 20 मिलियन टन अनाज सिलोस में फंस गया था और दर्जनों जहाज मास्को के आक्रमण से फंस गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान के साथ समझौते का समर्थन किया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।